మంగళం భగవాను వీరో మంగళం గౌతమో మంగళం కుందకుందార్యో నమో సుమంగళం ఆత్మా జ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాతన్యత్కరోతి పరభావస్య కర్తాత్మా మోహోయం వ్యవహారిణ అజ్ఞానతిమిరంధాన జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుణ్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురువే నమః నమయూణజినం వీరం అనంతవరణానదంశనసహావం వోచ్ఛామి నియమసారం కేవలీ సుదకేవలీ వణిదం.
యహ ప్రవచన రత్న చింతామణి భాగ్ దో పృష్ఠ క్రమాంక్ 70 70 यहां तो शुद्ध जो आत्मस्वरूप है जिसको यहां न्यायक भाव कहा है, ध्रुव स्वभाव भाव कहा है, परम पारिणामिक भाव कहा है, उसकी बात यहां चल रही है. और उस आत्मा में जो परमात्म तत्व ऐसा जो भगवान आत्मा है उसमें स्थिति बंध स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है वगैरह अन्य बातें भी हमने देखी थी, अनुभाग बंध स्थान नहीं वगैरह. तो यहां पर पेज नंबर 70 पर पहला पैराग्राफ है, अरे हमारा आत्म स्वभाव में विभाव नहीं. तो यहां तो विकारी जो परिणाम है वह भी मेरे में नहीं है ऐसा समझा रहे हैं. क्या कहते हैं, हमारा आत्म स्वभाव में विभाव नहीं, हमारा भगवान आत्मा में विभाव छे नहीं, तो पछी हमने तेनी शी चिंता. यानी हमें शुभ भाव करना चाहिए, अशुभ भाव छोड़ना चाहिए, ये क्यों चिंता करनी, क्योंकि वो मेरे स्वभाव में है नहीं, मेरे घर में है नहीं, मेरे कुल में है नहीं, ऐसी कि हम कितनी चिंता करते हैं. ख्याल में आया? तो कह रहे हैं, तो पछी हमने तेनी शी चिंता, जे भाव आत्मा मां नथी तेने हमारे शी चिंता. એમ શ્લોક 34માં આવ્યું છે ને, પરંતુ તે વાત કોને માટે છે કે જેને આત્મસ્વભાવ જણાયો છે અર્થાત જેને આત્મભાન કર્યું છે તેને માટે એ વાત છે, કેમ કે આત્મામાં વિભાવ નથી એવું તેને જણાયું છે ને. દેખો દેખો યહાં થોડા સા કોન્ટ્રોવર્સિયલ બાત આવેગી. यहां तो ये समझा रहे कि ये जो चिंता किसको नहीं होगी, तो जो आत्मानुभवी जीव है उसको ये चिंता नहीं होगी. अब इसके लिए हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रकाशक लिखने वाले जो प्रोडरमल जी है उनकी बात ध्यान में रखना. वहां तो वे ऐसा कह रहे हैं कि तुम अभी शुभ रूप प्रवर्तो, क्या कहा, लेकिन अंतरंग में तो ऐसा श्रद्धान रखो कि ये शुभ भाव भी छोड़ने लायक है. देखो कितना बैलेंस बात बताइए, जब तक शुद्धोपयोग तुम्हें नहीं होता है तो शुभ राग रूप प्रवर्तो, परंतु अंतर में ऐसा अभिप्राय तो रखो कि यह भी है, यह है छोड़ने लायक है. देखो यहां शुभ परिणामों का निषेध किया जरूर है, लेकिन किस अपेक्षा से, कि वह करने से धर्म नहीं होगा ये बात ध्यान में रखकर भले तुम उसमें प्रवर्तो. यहां क्या कह रहे हैं कि परंतु ते बात कोने माटे छे कि जेने आत्मस्वभाव जनाय वो छे, अर्थात जेने आत्मवान करी छे तेने माटे वात छे. शू वात छे कि जे बात जे भाव आत्मा में नहीं तेने हमारे शू चिंता, ऐसा उससे बिल्कुल जुदापन. अगर हम देखो अभी तो हम अभी हमने देखा था ना कि एक शुद्धोपयोग और दूसरा अशुद्धोपयोग, और अशुद्धोपयोग के दो भाग कौन से, एक शुभोपयोग एक अशुभोपयोग। अगर तुम शुभोपयोग रूप नहीं प्रवर्तोगे और शुद्धोपयोग भी नहीं होगा तो कहां जाएंगे, तो अशुभ उपयोग करने के लिए बताएंगे आपको कोई, ख्याल में आया? तो कह रहे हैं भाई जब तक तुम शुद्ध रूप नहीं प्रवर्तन कर रहे हो, आत्मानुभूति नहीं कर रहे हो, शुद्धोपयोग तुम्हारे से नहीं हो रहा है, तब तो शुभराग रूप परिणमो, शुभराग रूप प्रवर्तो। लेकिन परंतु अब ऐसा अभिप्राय तो रखो कि यह भी हेय है, ख्याल में आया? नहीं तो हम तो ऐसे सुनते हैं लोगों से, या तो शुभ परिणाम को भी यहां हेय कह रहे हैं, शुभ परिणाम को भी हेय कह रहे हैं। हेय कह रहे हैं किसके लिए, कि जिसको वो शुभ राग छोड़ के शुद्ध में जाना है उसके लिए, और जिसे शुद्ध में तो नहीं जा पा रहा है और शुभ भी छोड़ रहा है तो किधर जाएगा, नरक निगोद में जाएगा और क्या। लेकिन शुभराग रूप परिवर्तन कर रहे हो तब भी अपने अभिप्राय में तो रखो कैसे, कि जैसे आपके घर में पेटी पैदा होती है उसी समय हम निश्चित करते हैं कि ये तो पराया धन है, हा? तो उसको कम खाना खिलाना, लड़के को जास्ती खिलाना, ऐसा करते ना, क्या करते था आप, दोनों को इक्वल खाना देते, बच्चों की खातरी बहुत नहीं रखते, लड़की के तरफ ध्यान रखते हैं कहीं आयरा गहरा बात न घटित हो जाए, उसके लिए सजग रहते हैं ना। अरे वो तो जाने वाली है ना, काय को तुम तकलीफ करते हो, ऐसा नहीं, जानते हैं कि इसको भी छोड़ना है, इसका भी 20-25 साल में कहीं शादी कर देनी है, ख्याल में आया? फिर भी हम उसकी हिफाजत अच्छी तरह से करते हैं। वैसे यहां शुभ भाव भी छोड़ने योग्य है, फिर भी वो किए बिना नहीं रहते, ख्याल में है? ये बात है। तो क्या कहा देखो, केम के आत्मा मां विवानती एनु ए तेने जणायु छे ने, तेने एटले सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी जीवे, आई कहे छे के कर्मनी जे स्थिति बंधाणी छे ते निमित्त ने अनुरूप उपादान मां जे दशा एटले योग्यता छे ते त्रिकाळी स्वरूप मां नथी। कर्म मां जेवा स्थिति बंध प्रदेश बंध आदि होय छे ते रूपनी दशा जीवनी अंदर पर्याय मां पण होय छे। मतलब के ते प्रकारनी स्थिति आदि नु उपादान पनु अनुरूपनु जीवना पर्याय मां होय छे। आ रीते कर्म मां निमित्त रूपनी अनुकूल रूपनी स्थिति बंध आदि होय छे, अने जीवना पर्याय मां उपादान रूपनी अनुरूपनानी स्थिति आदि होय छे। आउ हुआ छता कहे छे ते बधुए जीवना त्रिकाळी स्वरूप मां नथी। वहां कर्म का और जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध रहेगा वो नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर भी कहते हैं वो जीव के त्रिकाली स्वभाव में वो है नहीं है, ना कर्म है ना जीव के परिणाम है, जो पर्याय है ना वो। अभी ये छठा नंबर का बोल, ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरणादि लिखा ना, तो कह रहे हैं जड़ आठ कर्म छे ने, तो आदि में ज्ञानावरण और अन्य सात, ऐसे आठ, आठ जड़ कर्म छे ने, तो ते अष्ट विध, विध ने प्रकार, आठ प्रकार ना कर्मो माना ते कर्म ने योग्य एवोज पुद्गल द्रव्य नो स्व आकार ते प्रकृति बंध छे। यानी ये जो एक समय में जो अनंत पुद्गल परमाणु कर्म के जो इकट्ठे होते हैं और उसको अलग अलग कर्म इसमें डिवाइड हो जाता है, वो इसमें ज्ञानावरण आदि दर्शना, ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह वगैरह जो अलग अलग जो बातें होती है, तो कहते हैं वो जो स्व आकार रूप जो होते हैं उसको प्रकृति बंध कहते हैं। स्व आकार इज इक्वल टू तेनु एटले पोतानु स्वरूप। प्रकृति ए पुद्गलनु स्वरूप छे, पुद्गलनो स्वभाव छे, माटे प्रकृति ने पुद्गलनो स्व आकार कयो छे। अर्थात पुद्गलना स्वभाव ने आई प्रकृति बंध कहे छे। क्या कहते हैं? पुद्गलना स्वभाव यानी प्रत्येक कर्म का स्वभाव अलग अलग है, ये तो मैंने कल बताया ना। दर्शनावरण कैसा काम करता है, शास्त्र में ऐसा उसका कथन आता है कि जैसा कोई महाराजा राजा हो और उसके दर्शन करने हम जाए तो बाहर दरबान खड़ा रहता है, एक अंदर नहीं जाने का, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। वो जैसा दर्शन में रुकावट लाता है वैसे ये दर्शनावरणी कर्म सामान्य अवलोकन में रुकावट लाता है। तो क्या काम, जैसे कल ज्ञानावरण की बात की थी ना कि आवरण ऊपर से पर्दा डाल दिया हो तो पूरी पूरी आकृति नहीं दिखे, पार्शल दिखे, वैसे ज्ञान भी आवरण आ जाता है तो पूरा पूरा विकसित नहीं होता है, उसमें अधूरा ज्ञान उसका रहता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं पुद्गलना स्वभाव ने आई प्रकृति बंध कहे छे। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि आदि नी प्रकृति पुद्गलनो स्वभाव छे ने माटे प्रकृति ने पुद्गलनो स्व आकार एटले स्वरूप कहियो छे। स्व आकार का अर्थ स्वरूप समझना, स्वभाव। अने तेना स्थानो एटले प्रकृति बंधना भेदो, स्थान का अर्थ यहां भेद लेना। निरंजन निज परमात्म तत्व ने नथी, टीका नी पहली लीटी में एम लीधु छे ने के निरंजन निज परमात्म तत्व ने तो ए शब्दो बधाए बोलमा लई लेवा। इसको क्या कहते हैं, बधाई बोलमा लई लेवा, नहीं नहीं नहीं, ये जो तीन शब्द है ना निरंजन निज परमात्म तत्व ने, ये शब्द जो है तीन हर जगह लेना, वो अर्थ बराबर है लेकिन वो ये जो शब्द है ना जिसको बार बार लेना है उसके लिए हमने शास्त्र में एक शब्द पढ़ा था आदि दीपक, नमो लो ये शुभ सावनम, ये अंत्य दीपक है, तो ये आदि दीपक आ गया, बहुत अच्छा। क्योंकि यहां दिया है ना कि टीका नी पहली लीटी में, तो पहली लीटी में आ गया तो वो आदि दीपक है, तो सब में लगाना। आदि है क्या, देख रही है क्या? हाँ, निरंजन निज परमात्म तो ये शब्दों बधाए बोलमा लई लेवा। आई कहूं के निज परमात्म तत्व में प्रकृति नो स्वभाव छे नहीं, अर्थात भगवान आत्मा ना त्रिकाली स्वभाव में प्रकृति नो स्वभाव नथी, क्योंकि वह तो पुद्गल का स्वभाव है, जीव का स्वभाव हो नहीं सकता। प्रश्न, शास्त्रों में तो घनी वार आवे छे कि केवड़ी ने चार कर्म बाकी रहा छे ने संसारी ने आठ कर्म होय छे, ए बधु तो निमित्तपनानु ज्ञान करावा माटे छे, बाकी कर्म वस्तुमां क्यां छे, वस्तुमां एटले जीव द्रव्यमां क्यां छे। आई तो ते उपरांत एम पण कहे छे के अनुकूल प्रकृति ने अनुरूप एवी जे दशा एटले पर्याय छे ते पण वस्तुमां नथी। अनुकूल प्रकृति यानी ये निमित्त रूप है और अनुरूप एवी जे दशा यानी जो पर्याय उसकी हो रही है वह पर्याय भी त्रिकाली वस्तु में नथी। आहा, प्रकृति तो परमा छे परंतु तेने अनुरूप जीवना पर्याय में जे योग्यतानो भाव छे जे विकृतपणु छे ते पण वस्तु में नथी। शुं कह्युं समझाणु काई, जे कर्मना स्थिति बंधने प्रकृति बंध आत्मा में नथी एम जे कह्युं छे ए एकला निमित्तनी वात नथी, यानी ये तो असलियत है ऐसा कहें। हवे पछी उदय स्थानो पण आत्मा में नथी એમ જે કહે છે તેનો અર્થ એ છે કે કર્મરૂપ નિમિત્તને અનુરૂપ એવી જે સ્થિતિ આદિની યોગ્યતાનો પર્યાય છે તે પણ આત્મામાં નથી. આહા, કર્મની જે સ્થિતિ આદિ બંધાય છે એ તો કર્મમાં રહી, પરંતુ તે કર્મને અનુરૂપ નૈમિત્તિક રૂપની યોગ્યતા જીવના પર્યાયમાં છે કે નહીં? હા છે. નહીં સમજ મારે? દેખો દેખો દેખો, અબ યહાં કિસકી બાત ચલ રહી હૈ? યહાં તો સ્થિતિ બંધકી હો રહી ના, કર્મની જે સ્થિતિ આદિ બંધાય. અભી હમ સ્થિતિ કી બાત કરતે હૈ તો કર્મ જો હૈ વહ કર્મ કી માન લીજે કે આપને 70 કોડાકોડી કી સ્થિતિ બાંધી હૈ, વો ઉસકા એક ભેદ હૈ. કોઈ 70 કોડાકોડી મેં એક સમય કમ, કોઈ દો સમય કમ, એસા જીતના અનેક અનેક સ્થાન જીસકો કહેંગે ભેદ, તો વો તો જો સ્થિતિ કી જો ભેદ હૈ યા સ્થિતિ જો બંધી જાતી હૈ તો કિસમે બનતી હૈ? વો કર્મો મેં બનતી હૈ. વો કિસ કારણ બનતી હૈ? જીવ કે પરિણામ કર્મ. તો જીવ કો જો પરિણામ હો રહે વો ત્રિકાલી સ્વભાવ મેં હૈ, ક્યા પર્યાય મેં હૈ? તો અભી ઉનકા એસા કહેના હૈ કે વો સ્થિતિ બંધ કી જો કર્મો મેં જો ગડબડી ચલ રહી વો ભી સ્વભાવ મેં નહીં, ઓર યે જો નિમિત્ત નૈમિત્તિક રૂપ જો પરિણામ હો રહે હૈ સ્વભાવ મેં નહીં હૈ. બોલો.
એસા ભી લેના પડા કે જૈસે કિસી ને 70 કોડાકોડી સાગર કી સ્થિતિ બાંધી તો ઉસકા ઉદય 7000 સાલ સે લેકર 70 કોડાકોડી સાગર વર્ષો તક હોતા રહેગા, તો ઉસકા ઉદય હોતા રહેગા યાને યહાં જીવ મેં યે જો હૈ ના નૈમિત્તિક રૂપ યોગ્યતા, યાને જીવ મેં ઇતને સાલ તક મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમને કી યોગ્યતા બની રહેગી. યહી તો યે કહેના ચાહતે હૈ ઉદય રૂપ નૈમિત્તિક ઉદય રૂપ મેં લેના. દેખો કર્મ કી સ્થિતિ બંધી, અબ યે બંધી ઉસમે ભી જીવ કા પરિણામ તો થા હી, જીવ કા પરિણામ ઉસમે નિમિત્ત રૂપ થા. અબ જો આગામી અભી સ્થિતિ બંધ હુઆ તો ઉતને કાલ તક ઉસકા ઉદય ભી ચલેગા, તો ઉદય ચલેગા તો વહાં જીવ મેં ભી વૈસી યોગ્યતા બની રહેગી ઇતને સાલો તક મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમને કી. યે જીવ કી અપની યોગ્યતા હૈ, જીવ કે એક સમય કે મિથ્યાત્વ પરિણામ કે કારણ ઇતની સ્થિતિ બંધી, યાની ઉસકે પરિણામ કો ભી બતા રહે. અબ ઇતની સ્થિતિ બંધી યે તો કર્મ મેં હોગી બાત, અબ યે સ્થિતિ બંધી હૈ તો ઉતની સ્થિતિ પૂરી હોને કે બાદ ઉદય ભી આને વાલા હૈ, અકેલે સ્થિતિ બંધી ઉસકા કોઈ માયના નહીં રખતા, તો ઉસકા ઉદય કાલ ઇતને કાલોન તક ઇતને સમયોન તક ચલતા રહેગા, તો ઉતને સમય તક જીવ મેં મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમને કી યોગ્યતા હૈ. એસે યે જીવ મેં લેના અનુરૂપ નૈમિત્તિક જો હૈ ને. દેખો ઇસકો ફિર પડના,
હમને તો સ્થિતિ બંધ કી અપેક્ષા સે કહા, આપ ઉદય.
હા, ઉદય કી અપેક્ષા સે મેં બતા રહી હું કે સ્થિતિ બંધ જો હુઆ હૈ
બરાબર,
અભી ઉસકા ફલ ભી મિલેગા. ઇસીલિયે યે ખાલી બંધ કે ચાર ભેદ લીએ યહાં, સ્થિતિ બંધ હા હોગા હી, બાંધા એક સમય મેં ઓર ભુગત રહા હૈ કરોડો યાને કોડા કોડી સાગરોન તક, 70 કોડાકોડી સાગરોન તક 70
કિતના અચ્છા ના,
તો ભોગ રહા હૈ ને
લોટરી લગ ગઈ એક દિન મેં
ભોગ રહા હૈ ને બિના ખાલી કર્મ ને ભોગ ના કર્મ સે ભોગતા એસા નહીં, ઉતને કાલ તક જીવ સ્વયં મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમેગા તભી તો ઉસકા મિથ્યાત્વ કા ઉદય આયેગા. જીવ યદિ તત્વ વિચાર કરેગા તો વો સારા સ્થિતિ બંધ ભી હટ જાયેગા, સ્થિતિ સત્વ સારા કમ હો જાયેગા.
થોડી શાંતિ સે સમજના કે કર્મ કા ઉદય આયા હૈ ઇસલિયે જીવ કો એસા મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમના પડે એસા ભી કમ્પલ્શન નહીં હૈ. અગર એસે હી વક્ત મેં ક્યોંકિ દેખો સમ્યક તો કોણ પ્રાપ્ત કરતા હૈ, સમ્યક ભી પ્રાપ્ત કરતા હૈ કે મિથ્યાત્વ ભી પ્રાપ્ત કરતા હૈ? પહેલી વાર પ્રાપ્ત કરે હો મિથ્યાત્વ, તો ફિર મિથ્યાત્વ તો મિથ્યાત્વ કર્મ કા ઉદય ઉદય તો ફિર ક્યાં કરે, મિથ્યાત્વ હી કરતે બેઠેગા? નહીં. યે જીવ કે પરિણામ ભી અપની યોગ્યતા કે અનુસાર હોતે રહેતે, લેકિન વો અપને આત્મા કો સમજને કી કોશિશ હી નહીં કરે, 70 કોડા કોડી મિથ્યાત્વ 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 કરતા રહે. હવે એવું છે કે દર વખતે 70 કોડા કોડી બાંધે એવું કઈ કમ્પલ્શન નથી, ઓછું હતું થતું જશે. એનો એનો ઉદય આવે ખરો, એનો ઉદય આવે ખરો, પણ જીવને એવું છે ને એવા વખતે પણ જો પોતાના સ્વરૂપનું એ ચિંતન કરે પોતાના બાબતમાં, એટલે બીજી ભાષામાં કહીએ તો પ્રયોગ લબ્ધિ સુધી આવે, तो बधी कर्मनी स्थिति बधा कर्मोनी स्थिति आयु कर्म छोड़ी ने अंत थोड़ा कूड़ी थी जाए ये आपणे कंई करवू पड़तू नथी कि आओ बेटा हजू थोड़ू हजू जरा नीचे ना एम जीव ने कंई करवू पड़तू नथी तो ए अहींया जो तत्वनो विचार करे निर्णय करवानी कोशिश करे पोताना स्वरूपनुं भान करवानी कोशिश करे तो त्यां एनी वेळे बधा कर्मोनी स्थिति ओछी थई जाय ने पाछू भयो ढायो थाय ने पाछू प्रायोगिक लब्धि छोड़ी दे એટલું બધું જે આપણે ક્રિકેટમાં જોઈએ ને એક ઓવરમાં 15 રન કાઢ્યા બીજાએ 23 રન કાઢ્યા ને પાછું કોઈ સારું બોલર આવે તો 2 રન કાઢ્યા તેવું થતું જાય છે હંમેશા
અને શામ કો 1 ઘંટે તક તો પ્રાયોગ લબ્ધિ મેં આ જતા હે ઓર
23 ઘંટા
એસા હી હૈ
मेन बात तो ऐसी ये प्रायोगिक लब्धि की स्थिति जो है ना वो अभव्य जीव भी करे उसको मना नहीं है वो करता भी है करे यानी कर सकता है
वहां तक आते हैं अभव्य जीव
लेकिन हमारे जैसे भव्य जीव करण लब्धि भी मान लेंगे और मोक्ष भी जाएंगे आज नहीं कल चिंता नहीं करनी की अरे हूं अभव्य होइस तो जरा भी नहीं क्या चलो हाँ
यही बताया ना अभी देखो कर्म को अनुकूल में लिया अभी उसका निमित्त किया
5 1 2 3 4 5 अनुकूल रूप की स्थिति बंद हो
थर्ड लाइन में यही बात आई थी तीसरी लाइन में भी पढ़ना देखो कर्मरूप निमित्त ने अनुरूप एवी जे स्थिति आदि नी योग्यता नो पर्याय आई ना बात उसी को फिर पांचवी लाइन में लिया यानी कर्म में तो स्थिति बंध हुआ अब उस स्थिति बंध को निमित्त करके
अनुकूल जो है ना वो निमित्त लेना और अनुरूप है
अब
वो
उसके अनुरूप जीव में क्या कार्य हुआ होगा कि उतनी उतनी स्थिति तक उतने काल तक वो मिथ्यात्व रूप परिणमेगा ये उसकी अनुरूप स्थितिवादी योग्यता स्थिति की योग्यता यानी उतने समय तक मिथ्यात्व रूप परिणमने की योग्यता जीव में है उसने स्वयं में ऐसी मिथ्यात्व की है कि उसके ऐसी मिथ्यात्व की योग्यता हुई वही लाइन वही फिर पांचवी लाइन में लिया कि कर्म ने अनुरूप नैमित्तिक रूप की योग्यता जीवना पर्याय में छे के नहीं कि कर्म को आधीन हो गया अरे रे क्या करे 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो गया अभी क्या करे यानी वो तो ऐसा मानता है कि कर्म ने मेरे को पराधीन बना दिया वो योग्यता जीव की स्वयं की है कि अभी मिथ्यात्व करता है और भविष्य में भी ऐसे ही मिथ्यात्व करता रहता है देखो आगे भी लिखा है बीजी रीते कहिए तो कर्मना स्थितिबंध आदि तो कर्म मां छे बराबर जीव ने तेनी साथे परमार्थे शू संबंध छे काई नहीं दो भिन्न द्रव्य है ना वे छता आत्माना पर्याय मां निमित्त एवी प्रकृति ने एटले उपाधि रूप प्रकृति ने अनुरूप
देखो यहां आत्मानी पर्याय मां एटले ये नैमित्तिक हो रहा है यानी कार्य हो रहा है
कार्य हो रहा है क्या कार्य होगा
प्रकृति ने जे निमित्त लीधु प्रकृति ने
हाँ
एने उपाधि पण कीधी
स्थिति आदि नी योग्यता नो भाव छे
अनुरूप
एने वो स्थिति बंध तो कर्म मां हुआ और आत्मा में भी स्थिति रूप भाव हुआ कर्म में स्थिति बंध हुआ इतने काल तक जीव के प्रदेशों में रहेगे और उसका उदय काल इतने समयों तक चलता रहेगा उसको कहते स्थिति बंध मैक्सिमम कितने काल तक रहा उसको स्थिति बंध कहा और जीव में भी मैक्सिमम उतने काल तक मिथ्यात्व रूप परिणमने का भाव है ना उसकी पर्याय की योग्यता वो जीव में ले रहा तो स्थिति आदि नी योग्यता नो भाव छे अने तो पण ते भाव भगवान निज परमात्मा तत्व मां नथी अभी वर्तमान का भी जो मिथ्यात्व परिणाम है वो जीव का अपना भाव है कर्म के कारण नहीं हुआ है कर्म है वहां निमित्त मिथ्यात्व का उदय है और यहां जीव में मिथ्यात्व रूप परिणाम है परंतु वो है तो जीव का भाव परंतु वो त्रिकाली में नहीं है मिथ्यात्व अवस्था में ऐसा निर्णय करेगा ना ज्ञान हाँ, मगर ये जो उसकी योग्यता
परिणम रहा है तब तो योग्यता है। अब जब वो मिथ्यात्व रूप परिणम रहा है तो उस समय की योग्यता के अनुरूप परिणम है।
देखो ऐसा लेना कि जैसे सामने अग्नि निमित्त है और उष्ण रूप परिणमने की पानी की योग्यता है ना, जब तक सामने अग्नि है तब तक उष्ण रूप परिणमने की पानी की योग्यता है, ऐसा लेना। परंतु अग्नि है इसलिए पानी गर्म हुआ, ऐसा नहीं है। और ये जो पानी में उष्ण रूप होने की योग्यता है वो उसके त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, शीतल स्वभाव है उसका, उसमें नहीं है, ऐसा लेना उसको।
अभी इनका ऐसा मानना है, पूछना है कि जब तक उसका उदय चालू रहेगा तब तक इस जीव को मिथ्यात्व के भाव करने ही पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं
नहीं
है।
नहीं, जीव स्वयं अपनी योग्यता से तत्व विचार में लगता है तो ये इतना पहले बांधा हुआ स्थितिबंध भी बहुत घट जाता है।
वो अग्नि से पानी हट गया समझ लो,
तत्व विचार करेगा तो वो उसमें मंद हो जाता है, अपने आप मंद हो जाता है, उसका उपशम होता है, उसका सारे
एक मिनट मैं उनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ये जो प्रायोगिक लब्धि में आया है ना जीव, अभी भी उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। अरे वो करण लब्धि में चढ़ गया है, अध प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण के लास्ट समय तक वो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। और जैसे वो उपशम का काल आ गया, गैप रह गया, वहां से वो मिथ्यात्व का उपशम हो गया, वहाँ तीन टुकड़े हो गए वगैरह वगैरह वगैरह,
फिर भी उसका ये जो मिथ्यात्व का उदय है वो भी इतना मंद 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 चल रहा है। ये सारे सहज ऐसे होते कि सारे जो अप्रशस्त कर्म है, पाप प्रकृतियां हैं, वो सारों का अनुभव अनंत गुना घटता है, अनंतवा भाग रह जाता है।
नहीं, वो बराबर है, लेकिन उनका प्रश्न जो है कि मिथ्यात्व आखिरी समय तक है, जब तक करण लब्धि तीसरे नंबर की पूरी नहीं होती है।
अब ये स्ट्रांग ऐसे एकदम तीव्र मिथ्यात्व नहीं समझना, परंतु है वहां तक मिथ्यात्व और वहां तक बंद भी है, करण लब्धि के अंत समय तक नया मिथ्यात्व का बंद भी है, जबकि वहां उपयोग तो आत्मा में लगा है करण लब्धि में, फिर भी परिणति में चल रहा है अभी मिथ्यात्व। उदय उसका
डिग्री अनुभाग घटता है,
उसका अनुभाग घटता है, उसको उपशम नहीं कहते।
अनुभाग घटना यानी उसका जो फल देने की जो मिथ्यात्व का पहला जो स्ट्रेंथ था वो घटित हो जाता, मतलब कम होते जाता है, तो वो ऐसा हो जाता है कि उसका उसके बाद में तो उपशम ही है ना, जो कुछ कर्म बाकी है उसका उपशम किया है, वो घटने के कारण वो उपशमित हुआ ऐसा नहीं, फिर स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर स्ट्रांग हो जाएंगे। और हम ऐसा ही मानेंगे कि वो कर्म जब तक है तब तक तो ये जीव अपने सीधे अच्छे परिणाम कर ही नहीं सके, कर्म के कारण ही उसको ऐसा मिथ्यात्व करना पड़ता है, तो फिर कर्म का उदय कब नहीं है, क्योंकि हर समय नया बांधता ही है ना, तो उसकी लाइन रुके कब। तो ये तो समझाने के लिए कह रहे भी कर्म के उदय के कारण यह जीव खोटा परिणाम कर रहा है, खोटा परिणाम करना यह जीव की स्वयं की योग्यता है, और अच्छा परिणाम करना या सम्यक परिणाम करना वह जीव की अपनी स्वयं की योग्यता है। कर्म के कारण इस जीव की योग्यता में कुछ फर्क पड़े ऐसा नहीं है, और कर्म के जीव के परिणामों के कारण कर्म में कुछ उथल पुथल होता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो दोनों जब होते हैं तो कहते कि जीव ने ऐसे अच्छे परिणाम किए तो देखो सारे कर्म नीचे आ गए। ये तो निमित्त की बात इसलिए समझा रहे कि वहां कर्म की क्या हालत चल रही है वो समझाने के लिए, या जीव के परिणामों की बात करके उसका एक दूसरे से निमित्त नैमित्तिक संबंध बताकर दोनों का ज्ञान कराया। लेकिन पहले जब हम करणानियों पढ़ते हैं तो बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए कि कर्म जीव को कुछ भी नहीं करता, जीव कर्म को बांधता तक नहीं, चलो जाओ क्या आओ। हाँ, क्योंकि देखो मैया बात तो ऐसी है, हम तो ऐसा ही हो यारे, जरा अनेक भोले जीवों की ऐसी मान्यता है कि जीव कर्म को बांधता है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा पढ़ता है अरिहंत भगवान ने चार घाती कर्मों का नाश किया, तो और तू कौन सा आया, कि कर्म बांधता ही नहीं बताने वाला। अरे भाई हम नहीं बता रहे, ये तो जिनेन्द्र भगवान ने बात बताई। पहले तो ये समझाओ पुद्गल है ना, कर्म क्या है, पुद्गल है ना, तो पुद्गल में और जीव द्रव्य में कौन सा अभाव है आप जानते हैं? अत्यंत अभाव है। यानी एक का जो जीव का स्वचतुष्टय है और जो पुद्गल का स्वचतुष्टय, दोनों भिन्न भिन्न है ख्याल में। तो जीव की अस्थि जीव में है और पुद्गल की अस्थि पुद्गल में है, जीव की नास्ति पुद्गल में है। तो जिसमें जीव पुद्गल में है ही नहीं, तो पुद्गल को बांधे, उसको छोड़े, उसको लंबा करे, छोटा करे, कैसा होता है? लेकिन जब जब जीव के ऐसे परिणाम होते हैं, तब कर्मों में जो कोई कम अधिकता होती है, जो 10 प्रकार की अवस्थाएं होती है, वो क्या क्या होती है, केवल ज्ञानी जाने के नहीं जाने। तो उन्होंने जाना तो उन्होंने समझाया दिव्य ध्वनि में, और जो समझाया वो आचार्य ने अपने अपने योग्यता के अनुसार वो देखा। ठाम ठूम ठूम चले दूसरा बोलते नहीं, ये हिंसा मारी मारी नहीं चाहिए, हम तो कौटुंबिक देखेंगे। वैसे आचार्य भी चार प्रकार से ये जो शास्त्र है उसका कथन करते हैं, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग। ये सारा दिव्य धनी का सार ही है, उसमें प्रत्येक अनुयोग की कथन शैली अलग अलग है, इसलिए हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। अगर सच्ची बात देखनी है तो कर्म का परिणमन कब से चल रहा है, अनादि से कर्म का परिणमन चल रहा है, कर्म रूप जो होना होना होना, और पुद्गल का अपना अपना परिणमन अपने अपने में हो रहा है। लेकिन जब पर्टिकुलर किसी जीव की बात करते हैं तो उसके परिणामों के अनुसार यहाँ कर्म में जो कुछ गड़बड़ी होती है, जो कुछ हलन चलन होता है, तो उसका संबंध बताते हैं। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो आज तक इस जीव ने कर्म को छुआ तक नहीं, बांधने और छोड़ने की तो बात ही छोड़ो। ये तो भैया समझाने के लिए, हमें ज्ञान कराने के लिए ऐसा बताते हैं। पहले हम निडर तो हो जाए कि कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता है। देखो अरे भाई कर्म आया क्या करें, साढ़े सदी पीछे लगी, मैं पाप का उदय है, अपना सुशीला बेन गुरती हमारे पाप का उदय है, काय का उदय है किसको मालूम है, देखा तुमने पाप काला होता है गोरा होता है। पर ये ऐसा समझते हैं कि हमको सामने वाला कर्म तकलीफ देता है, तो ये हमारा डर निकल जाए इसलिए पहले आपको जड़ी बूटी देता हूं, वो मुंह में रखो, कोई भूत तुम्हारे पीछे नहीं आएगा।
देखो
हाँ छह छह
हाँ छह ने देखो संयोग में जो चीजें हैं उनमें हमें भिन्नता से ज्ञान करना है। जैसे पानी में आपने कपड़ा डाला तो हम क्या कहते हैं, कपड़ा गीला हुआ,
पानी में कपड़ा है
हा? तो क्या कपड़ा गीला हुआ कि पानी गीला है? कपड़ा तो कपड़े में है, पानी पानी में है, दोनों का संयोग होता है। हम तो ऐसे कहें कपड़ा तो गीला हुआ है, और हुआ है हम स्पष्ट देख रहे हैं, परंतु वो जो गीला है वो पानी है और कपड़ा भिन्न है। वो ऐसे व्यवहार में भी हम बहुत चतुर हैं। गाय को रस्सी से बांधा, सच कहो, रस्सी से रस्सी को बांधा कि गाय को बांधा? तो गाय गाय में है, रस्सी रस्सी में है, हाथ में कंगन पहने, कंगन कंगन में है, हाथ हाथ में है, क्या कहते हम?
हाथ में कंगन नहीं पहने, कंगन में हाथ डाले हैं। कथन शैली अलग होती है, समझना अलग होता है, हम बहुत चतुर हैं।
ऐसे आत्मा आत्मा में है, कर्म कर्म में है, दो भिन्न द्रव्य है ना। अभी दोनों का एक दूसरे के साथ निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है, इसलिए आत्मा ने बांधा, आत्मा ने छोड़ा, आत्मा ने उसको संक्रमण किया, उसका स्थिति बंद किया, ऐसी बातें बातें आएगी सारी। हाँ
इसलिए यहाँ ऐसा कहते कि ये जो बंद उदय स्थान आदि जो है ना, वो आत्मा में नहीं है। यहां तक तो समझ गए हम, क्योंकि वो तो भिन्न द्रव्य है, अभी बताते हैं कि उसके अनुकूल होने के कारण यहाँ जीव के जो परिणाम हो रहे हैं, जीव के जो भाव हो रहे हैं, वो भाव कहाँ हो रहे हैं? पर्याय में हो रहे हैं। वो भाव भी है, वो पर्याय भी आत्मा में नहीं है। कौन सी त्रिकाली जो आत्मा है, जो शुद्ध निज परम तत्व जिसको कहा गया है, परमात्म तत्व जिसको कहा गया है, उसमें ये कोई पर्याय है नहीं। पर इतना मूल ध्यान में रखना, बाकी कितने इधर उधर से शब्दों में कुछ भी जंजाल हमारे आगे पीछे लगा हुए, ये बात बिल्कुल साफ रखना कि त्रिकाली जो मेरा स्वभाव भाव है उसमें जहां विकारी परिणाम भी नहीं और अविकारी परिणाम भी नहीं। क्यों? पर्याय तक नहीं है मेरे में। फिर वो विकारी अविकारी तो बात छोड़ो, अरे जो मेरे असंख्यात प्रदेश में उत्पन्न होने वाले ये विकारी या अविकारी परिणाम भी त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, तो ये कर्म का जो उदय स्थान है, बंध स्थान है, अनुभाग स्थान है, वो काय के मेरे में? प्रकृति स्थान कुछ नहीं है मेरे में। बस इतनी बात ध्यान में रखना, बाकी डरना नहीं। यहां आए तो निडर होके जाना, कोई लॉरी आवे तो जाके सामने खड़ा रह जाना। आयु कर्म बाकी होगा तो बचोगे, नहीं तो मजाक करता हूं, करना नहीं, नहीं तो नहीं मैं भाई बात ऐसी, हमें यहां वस्तु स्वरूप पता लगने से ऑटोमेटिकली हमको डर भय निकल जाता है। हम तो अनादि से यही इसी चक्कर में फंसे हैं। और एक थोड़ी सी बात बताता हूं कि हमने तीन किताबें छापी है, एक जैन तत्व परिचय, एक करणानियोग परिचय और एक कारण कार्य रहस्य। इसमें से अधिक हमारी किताबें जो खपत हुआ होगा तो करणानियोग, जिसमें कर्म सिद्धांत है, और वो अधिकतर दिगंबर जैनों से भी अन्य लोगों ने बहुत लिए हैं, डिमांडेड, क्योंकि कर्म के बारे में लोगों में कुछ हवा सा पैदा हो गया है। अरे कर्म 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 कुछ नहीं है, कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, ऐसा कहा है। परसों आया था ना, मैं ही भूल करता हूं, कर्म को मालूम भी नहीं, अक्कल नहीं, उसको ज्ञान गुण नहीं है कि इसको चिपकना के उसको चिपकना के किसको चिपकना, क्या है उसको, क्या है? ये तो सहज ऐसा परिणमन होता है, तो आचार्य उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध हमको समझाते हैं। तो निमित्त नैमित्तिक, तो नैमित्तिक में निमित्त तो कुछ भी नहीं करता, यानी जो कार्य होता है वो नैमित्तिक हुआ, तो जीव परिणाम कुछ कर रहा है तो क्यों सामने ऐसा निमित्त आया? तो पहले में पहला नियम कौन सा अपना, निमित्त कोई भी कार्य में कुछ मदद, असर, हेरा फेर कुछ नहीं करता। देखो हमारे पास ऐसे सिद्धांत आए ना, हर समय फटाफट फटाफट फटाफट, जैसे कंप्यूटर में ऐसा दबा दो टुर्र, सब लाइन में एक के पीछे आते, फिर अपने को जिसको चाहे हम उसको दबाते तो आया अपना, ऐसा ये सारी पिक्चरें चलती है, चलने दो, उसमें कंफ्यूज मत होना। मूल अपने पास जो सिद्धांत बैठे हैं उसको हाथ में रखना, तो किसी भी बात का हमें कोई भी भय नहीं लगेगा। और हमारे घर ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या, कुछ नहीं, ये थोड़े बहुत दिन में आप ये सिद्धांत पकड़ोगे तो कोई भी जाते आते तुमको ऐसा टपली मारेगा तो उधर गिरेगा, इधर से मारेगा तो इधर गिरेगा, ऐसा जो पहला था वो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी सिद्धांत अपने हाथ में आ गए ना, तो कोई ऐसा पोलम पोल करता है तो अपनी सब बातें ख्याल में आती है। बाकी बात हमारे क्या है, हाँ एक डजन की कहानी पूछ लेना उनको, वो बता देंगे। आपके स्कूटर में जाते जाते कोर कोर में बात कर लेना भैया उनसे। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आई ना, यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है ना, ये लास्ट बट वन लाइन है ना, उपाधि रूप प्रकृति ने लिखा ना, उसके आगे अनुरूप स्थिति आदि नी योग्यतानो भाव। तो ये जो भाव है वह जीव के ही भाव है ना, अने तोपन ते भाव, ये जो भाव चल रहे हैं ये भाव भगवान निज परमात्म तत्व मान थी। मिल गया हरीश भाई, ख्याल में आई ना बात? मैं जरा जोर से बोलता हूँ इसलिए ख्याल में आई, ऐसा नहीं बोलना नहीं तो फिर उसके लिए कथा सुनानी पड़ेगी मेरे को। मत जीव के वो विवाह भाव है ना, पर्याय है ना बेटा, तो पर्याय कोई भी पर्याय वो भले विकारी होवे, विवाह रूप होवे या स्वभाव रूप होवे, दोनों उसमें नहीं है। किसमें? तो त्रिकाली परमात्मा तत्व में नहीं। यहां तो हमें शुद्ध भाव अधिकार चल रहे हैं ना, तो शुद्ध भाव जो है न्यायक भाव ध्रुव स्वभाव वो त्रिकाली एक जैसा होगा। अभी ये पर्याय तो अभी आए निकल गए, कभी दूसरी पर्याय कभी तीसरी पर्याय, कभी ज्ञान की लो तो कम अधिक वाली आई, चारित्र की लो तो कभी अशुद्ध क्या कहते हैं अशुभ आई कभी शुभ आई, तो ये तो एक एक समय में आके निकल जाती है। हाँ एकदम इसमें गई क्या समझता ना चलो अच्छा है तरो तरो सात नंबर अशुद्ध अंत तत्व ना जोयू पर्याय अशुद्ध अंत तत्व छे ने। अभी पर्याय को यहां अशुद्ध अंतस्तत्व का अंतस्तत्व क्यों, क्योंकि वो अपने में उत्पन्न होता है ना, एटले कहे छे के अशुद्ध अंतस्तत्व ना ने पुद्गल कर्मना प्रदेशों नो परस्पर प्रवेश ते प्रदेश बंद छे। यानी यहां जीव के परिणाम और वहां कर्म का आना एक क्षेत्र में रहना इसको कहते हैं प्रदेश बंद। पर्याय ने अने कर्म ने निमित्त नैमित्तिक संबंध छे ने एटले परस्पर प्रवेश एम कहूं छे, तथा जड़ कर्म ने पर्याय नी साथे ज संबंध छे, शुद्ध द्रव्य नी साथे काई संबंध नथी। ये भी पर्याय नी साथे संबंध छे ऐसा कहना भी निमित्त का कथन है, क्योंकि समझ लीजिए अभी समझाने के लिए अभी कर्म के परमाणु यहां पड़े हैं यहां बाजू बाजू में, और मैंने कुछ ऐसे परिणाम किए तो वहां से हटकर अपनी अपनी क्रियावृत्ति शक्ति के कारण यहां जो आत्मा के प्रदेश जो है उधर आके स्थित हुए और मेरे कर्म रूप बने। ख्याल में तो ऐसा कहते कि इस जीव ने कर्म बांधे। हाँ और समझो कुछ काल के बाद वो इधर से हटकर उदय रूप आके कहीं और निकल गए, ये बहुत स्थूल कथन है, और कहीं निकल गए तो इसने कर्म को छोड़ दिया या उसका नाश किया जो भी आपको कहना है। वो तो आना तो उसके कारण से जाना तो उसके कारण से, लेकिन उस समय जो जीव के परिणाम होंगे तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा समझा दिया। तो यहां क्या कहा जड़ कर्म ने पर्यायनी साथे ज संबंध छे, क्योंकि पर्याय में यह जीव भाव करता है तभी तो कर्म आते हैं, तो उसके पर्याय के साथ संबंध है। अगर शुद्ध द्रव्य नहीं साथ एक संबंध थी तो त्रिकाली जो स्वभाव भाव है उसके साथ कोई संबंध है नहीं। अब जो अहिया अशुद्ध है वो शब्द छे ने, अर्थात पर्याय अशुद्ध छे एम कहू ने, तो एनो अर्थ ए छे कि जेटला कर्म पुद्गलना प्रदेश छे, कर्म में जेटला परमाणुनी संख्या छे ते प्रकारनी जाई आत्माना पर्याय में योग्यता छे, छता नैमित्तिक में एटले शेबा जीवना पर्याय में पोताना कारणे ए जातनी योग्यता छे, अने निमित्त एटले कर्म पण पोताना कारणे छे। अभी क्लियर हो गए, कितनी सीधी बात है निंसी भाई, बात ख्याल में बैठती थोड़ी बहुत। ये अभी क्या है बेसिक जो रूल्स है ना वो शायद आपको अभी नए नए है, लेकिन आएगा कभी ना कभी वो टाइम आएगा कि वो उसका एक्सप्लेनेशन मिले, लेकिन हर बात के लिए हम पीछे पीछे दौड़े तो आगे जाने का चांस ही नहीं रहेगा। आ जाएगी बात, बस आप आते रहना इतना ही हम कहते हैं। आप दो हमारे मेहमान है ना आजकल, ये तो घर वाले लोग है सब, तो आपको रिक्वेस्ट है भाई आना, वो भी अपना भला करना हो तो हो, मेरे लिए नहीं पहले बताता हूं, क्योंकि हम दो आदमी भी होवे तो बोलूं और 20 आदमी होवे तो भी बोलूं। यहां तो भाई वस्तु स्वरूप समझाने का जो जिनेन्द्र भगवान का जो कोई मतलब उनके दिव्य ध्वनि से जो बात निकली है वो समझने का हमें पुरुषार्थ करना है बस, और इसके लिए हमें आना हो तो आओ, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या कहते देखो नैमित्तिक मां एटले जीवना पर्याय में पोताने कारणे ए जातनी योग्यता छे, पोताना कारणे बीजाना कारणे ने, अने निमित्त एटले कर्म पण पोताने कारणे छे। आ प्रश्न विक्रम संवत 1984 में थयो हतो, વીરજી ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે નિગોદના જીવને આટલા કર્મ છે એમ કહેવાય છે, પરંતુ એ તો જળમાં છે, તો જીવમાં તે સમયે શું લેવું? તે વખતે ઉત્તર આપતા કહેલું કે જેવી યોગ્યતા ત્યાં કર્મમાં છે તેવી જ તેને અનુકૂળ યોગ્યતા અહીં જીવમાં છે. યાને ક્યા કહેતે હૈ કે વહાં જો કર્મ હૈ ઉસ નિગોદિયા જીવ કે ઉસ રૂપ વહાં તો વો નિમિત્ત રૂપ સે તો યહાં જીવ કે પરિણામ ભી એસે ઉસ ટાઈપ કે ઉસ યોગ્યતા કે હોંગે કે જિસકે કારણ ઉસકો વહાં રહેના પડતા હૈ. જીવ કર્મને અનુકૂળ નિમિત્ત છે અને તેવી રીતે કર્મ પણ જીવને અનુકૂળ છે. જો આપ કહેતે ને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ આપસ મેં હોતા યે બાત યહાં હૈ, યાને કહેતે જીવ કર્મને અનુકૂળ છે, અનુકૂળ યાને ક્યાં નિમિત્ત છે, અને તેવી જ રીતે કર્મ પણ જીવને અનુકૂળ એટલે નિમિત્ત છે. જો કે નિમિત્ત તો નિમિત્તપણે જ રહ્યું છે, તે કંઈ આત્માને અડતું નથી. આયા ના બાત હમણે ક્યાં ક્યાં સ્પર્શ ભી નહીં કરતા, એ ગુજરાતી મેં બોલા અડતું નથી. અડતું નથી મજે સ્પર્શ સુધા કરત નહી. આઠે કર્મની પ્રકૃતિ પોતાને કર્મને કારણે આવી છે અને તે જીવના પર્યાયની યોગ્યતાનું કારણ એટલે યોગ્ય જીવના પર્યાયને નિમિત્ત છે. આ યોગ્યતાનો પણ જીવમાં અભાવ છે. અભી ક્યાં કહે રહે યે જો ભાવ ચલ રહે ના ઉસકે યોગ્યતા રૂપ ઉસ ઉસ સમય કે વો પર્યાય ભી ત્રિકાલી સ્વભાવ મે નહીં હૈ, જીવમાં અભાવ છે. તો આ ત્રિકાળી જીવમાં ક્યાં લખ્યું છે? અરે સમજવા જોઈએ તારે, હું ખ્યાલ મેં આયા શું કીધું? આ યોગ્યતાનો પણ જીવમાં અભાવ છે અને એવા ભગવાન રૂપની જે પરમાત્મા તત્વની દ્રષ્ટિ કરવા જેવી છે કે જેને સમ્યક દર્શન કહેવામાં આવે છે. ક્યાં પૂછને યે સમજ મેં આયા? આ હા, શુદ્ધ ભાવ કોને કહે છે એ વાત અહીં ચાલે છે. આત્માનો જે ત્રિકાળી શુદ્ધ ધ્રુવ નિત્યાનંદ સ્વભાવ છે તેને અહીં શુદ્ધ ભાવ કહે છે, જેમાં સંયોગી ચીજ નથી. શું કીધું? જો કે આત્માનો જે ત્રિકાળી શુદ્ધ ધ્રુવ નિત્યાનંદ સ્વભાવ છે તેને અહીં શુદ્ધ ભાવ કહે છે, જેમાં સંયોગી ચીજ નથી, જેમાં પુણ્યને પાપના ભાવ નથી, તેમજ જેમાં એક સમયની વ્યક્ત પ્રકટ અવસ્થા પણ નથી. એવો જે પોતાનો નિજ પરમાત્મ સ્વભાવ છે તેને અહીં શુદ્ધ ભાવ કહેવામાં આવે છે. એ સમજમાં આયા? ક્યાં કહેતે? દેખો, જેમાં સંયોગી ચીજ નથી. અભી યહાં સંયોગી ક્યાં લેના? યે ટેબલ કુર્સી યે નહીં, અરે યે કર્મ કી બાત કર રહે. ક્યાં બતાયા? વો સંયોગી ચીજ થોડી હૈ. સંયોગી ચીજ કોણ સી? કે નિમિત્ત રૂપ જો હૈ વો, હા, જેમાં સંયોગી. અભી આપની તો બાત નિમિત્ત કી ચલ રહી, મતલબ કર્મ કી ચલ રહી ના, કે ઉદય સ્થાનો બંધ સ્થાનો યે સારે ક્યાં હૈ? સંયોગી પદાર્થ હૈ. તો જેમાં સંયોગી ચીજ નથી અને શું કીધું? જેમાં પુણ્યને પાપના ભાવ નથી, તેમજ જેમાં એક સમયની વ્યક્ત એટલે પ્રકટ અવસ્થા એટલે પર્યાય પણ નથી, એવો જે પોતાનો નિજ પરમાત્મ સ્વભાવ છે તેને અહીં શુદ્ધ ભાવ કહેવામાં આવે છે, અને તે શુદ્ધ ભાવ સમ્યક દર્શનનો વિષય છે. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરના પંથમાં સમ્યક દર્શન એ ધર્મની પ્રથમ સીડી છે. તે સમ્યક દર્શન રૂપી પહેલું પગથિયું ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવ એવા નિરંજન નિજ પરમાત્મ તત્વની અંતરદ્રષ્ટિ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત પૂર્ણાનંદ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ જે શ્રદ્ધામાં થાય તે શ્રદ્ધાને સમ્યક દર્શન કહે છે. ક્યા લિખા દેખો, જો પૂર્ણ આનંદ સ્વભાવ હૈ, યાની જો આત્મા કા જૈસા સ્વભાવ હૈ, ઉસકી પ્રાપ્તિ જે શ્રદ્ધામાં થાય, શ્રદ્ધા કોણ કી પરિણતિ હોઈ ના, તે શ્રદ્ધાને સમ્યક દર્શન કહે છે. આવી વાત છે. જો ઉપર શુદ્ધ ભાવ એમ લખ્યું છે ને, તો તે શુદ્ધ ભાવ એટલે શું? અશુદ્ધ એવા જે પુણ્યપાપ ભાવ થાય છે તે શુદ્ધ ભાવ નથી. ક્યા કહા? શુભ ભાવ કો ભી શુદ્ધ ભાવ નહીં કહા, વો અલગ હૈ બોલ રહે. તેમજ જે અશુદ્ધતાથી રહિત આત્માના આશરે શુદ્ધ રૂપ જે નિર્મળ દશા પ્રગટ થાય છે તે પણ શુદ્ધ ભાવ નથી. હા, પાડન, દશા, હા દશા એને પર્યાય. લેકિન યા ક્યાં સમજા રે, સમજ લો. પહેલે તો વિકારી પર્યાય લી, કોણ સી, શુભ અશુભ પરિણામો કી, વહ ભી સ્વભાવ મેં નહીં હૈ. તો ઉસકે આગે બોલતે કે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત હુઆ વહ અવિકારી પર્યાય હોઈ, નિર્જરા રૂપ ભી અવિકારી પર્યાય ચાલુ હૈ, મોક્ષ રૂપ ભી અવિકારી પર્યાય પ્રકટ હોઈ, વહ ભી સ્વભાવ મેં નહીં હૈ. પર્યાય નહીં હૈ. દેખો ફિર સે યે લિખા ના, શું લખ્યું ને ઉસકે આગે, નીચે સે પાંચમી લાઇન હૈ શાયદ, અશુદ્ધ એવા પુણ્ય પાપ ભાવ થાય છે તે શુદ્ધ ભાવ નથી. એ તો સમજમાં આવતી વાત. તેમજ જે તે અશુદ્ધતાથી રહિત, અશુદ્ધતાથી રહિત ક્યાં હૈ, આત્માના આશરે શુદ્ધ રૂપ જે નિર્મળ દશા પ્રકટ થાય છે તે પણ શુદ્ધ ભાવ નથી. એ શુદ્ધ ભાવ એની ત્રિકાળી જો સ્વભાવ ભાવ હૈ, જે ઉપર લિખા ના શુદ્ધ ધ્રુવ ત્રિકાળી, એસા જો શુદ્ધ ધ્રુવ નિત્યાનંદ સ્વભાવ જો હૈ, ઉસકો યહાં શુભ ભાવ શુદ્ધ ભાવ કહા હૈ. તો એ જો શુદ્ધ નિર્મળ દશા પ્રકટ થાય છે તે પણ શુદ્ધ ભાવ નથી. મતલબ કે પર્યાય રૂપ જે શુદ્ધ ભાવ છે તેને અહી વાત નથી, પરંતુ ભગવાન આત્મા કે જે એક સેકન્ડના અસંખ્યાતમાં ભાગમાં પણ ધ્રુવ સ્વરૂપ નિજ પરમાત્મા છે તેને અહી શુદ્ધ ભાવ કહેવામાં આવે છે. તો એક સેકન્ડના અસંખ્યાતમાં ભાગ યાને ક્યાં હુઆ, એક સમય, ખ્યાલ મેં આયા? તો કહેતે એક સમય મેં ભી કેસા હૈ, પૂર્ણ ધ્રુવ સ્વરૂપ હૈ નિજ પરમાત્મા. યાને હર સમય હૈ 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 હૈ, કબ નહીં, અરે ત્રિકાલ હૈ, તેને આ શુદ્ધ ભાવ કહેવામાં આવે છે. આ હા, વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથે જેવો આત્મા દેખ્યો છે તેવો પૂર્ણપણે પ્રાપ્ત કર્યો છે, અને તેની વાત તેમની દિવ્ય ધ્વનિમાં આવી છે કે પ્રભુ આ તારી ચીજ છે, અરે તું સંસારના 84 લાખ યોનિના અવતારની, અવતાર એટલે વો 14 અવતાર કરતે વો નહીં, એ જન્મ મરણ જો હૈ ઉસકો અવતાર કહા હૈ. વો હમારે ક્યા નામ હૈ, પિનાંગ ભાઈ કો વો આજ કા રામ અવતાર એમએલએ વો યાદ આયા, વો નહીં. એ તો ભાઈ ભાઈ એ તો અન્ય મતી માનતે હૈ ના કે કુર્મા અવતાર એ વગેરે, વરાહ અવતાર વગેરે વગેરે, જો નરસિંહ અવતાર, વો ઉસકી વાત કહે રહે, વો અવતાર નહીં. યહાં અવતાર કા અર્થ હોતા હૈ જન્મ મરણ, જન્મ મેં અવતરણ કરના ઓર મરણ મેં વો ખતમ હો જાના, ફિર નયા જન્મ લેના, ઉસકો અવતાર કહેતે હૈ. 84 લાખ યોનિમાં સ્વર્ગનો, અરે ઉપર ઉપર, તું સંસારના 84 લાખ યોનિના અવતારની એટલે જન્મ મરણની દુઃખમય ઘાણીમાં પિલાય છે. એ જન્મ હોના જબ ભી જીવ ઇતના તકલીફ મેં હોતા હૈ, ઓર અભી સમજ લો કે મુઝે મોત આને વાલી હૈ, એસા પતા લગે કે ડોક્ટર બોલે કે જા તેરે કો કેન્સર હો ગયા, 3 મહિને મેં તેરી મોત આને વાલી, તો ફિર ઉસકો દેખો, અભી મરેલા હો ગયા, 3 મહિને કી બાત નહી. તો ઇતની આકુલતા, ઇતની આકુલતા, તો કહેતે હૈ કે ચોરા ક્યાં કહેતે જન્મ મરણની દુઃખમય ઘાણીમાં પીલાય છે, 84 લાખ યોનિમાં સ્વર્ગનો ભવ હો કે અબજોપતિ શેઠનો ભવ હો, એ બધા દુઃખી પ્રાણી છે. ક્યાં કહેતે અરે સ્વર્ગ મેં અગર જીવ જાવે તબ ભી વહાં દુઃખ હી દુઃખ હૈ. દેખો હમને પઢા થા કુછ દિન પહેલે કે સ્વર્ગ કા સુખ કૈસા હૈ, તો ગરમ ઘી અગર આપણે શરીર પે છિડકાએ તો કિતના ઠંડા લગેગા કે નહીં, એસા વહાં કા સુખ હૈ. ઉબલતા હુઆ ઘી થોડા સા છિડક દેવે એસા, એસા વહાં કા સુખ હૈ એસા કહેતે. તો આપકો ચાહીએ ક્યા તો ભેજ દેંગે, અભી રિઝર્વેશન કરા કે એસા. ક્યા કહે રહે દેખો, વો 84 લાખ યોનિમાં સ્વર્ગનો ભવ હો કે અબજોપતિ શેઠનો ભવ હો, એ બધા પ્રાણી દુઃખી છે. પોતાના શુદ્ધ ભાવનો આશ્રય લીધા વિના જેટલા પુણ્ય પાપના વિકલ્પ થાય તે બધા દુઃખના અંગારા છે. અંગારા એને ક્યાં, હા જલતા હુઆ, જલા હુઆ નહીં, જલતા હુઆ. હા વો કૈસા હૈ, જરા ચિપકાવે તો, હા 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 ઠંડી ઠંડી. તો એ ક્યાં કહેતે, એ જો હૈ પુણ્ય પાપના વિકલ્પ, બાકી કુછ નહીં, તું વિકલ્પ કર રહા હૈ વહ ભી, તે બધા પુણ્ય હો કે પાપ હો દુઃખના અંગારા છે, આકુળતા છે, પણ તેને ભાન નથી, તે મૂળ છે. તેને પોતાની ખબર નથી કે મારી દશામાં શું છે ને મારા સ્વભાવમાં શું છે, તે બે વાતનો તેને પત્તો નથી. એ પૂરા કરી દેતે હૈ, આહા હા, પોતાના પર્યાયમાં શરીર વાણી કર્મ ને બીજી પર ચીજ તો નથી. દેખો ક્યાં કહેતે હૈ, એ એક ક્ષેત્ર મેં રહેને વાલા એસા જો શરીર હૈ, વાણી હૈ, કર્મ હૈ, એ કૈસે હૈ, પર ચીજ હૈ. કર્મ કો ભી પર ચીજ કા, શરીર કો ભી પર ચીજ કા, એ જો શબ્દ નિકલ રહે વાણી વહ ભી પર ચીજ હૈ. તો પરંતુ ત્રિકાળી શુદ્ધ ભાવ પણ તેમાં આવ્યો નથી, યાને વો મેરે મેં નહીં હૈ ઓર ઉનમેં યે શુદ્ધ ભાવ ભી કભી ગયા નહીં હૈ. તેની અવસ્થામાં એટલે પર્યાયમાં દયાદાન વ્રત ભક્તિ પૂજાનો પૂજાદીના ભાવ છે, અથવા તો હિંસા પૂજાદીના ભાવ, એક શબ્દ હૈ પૂજાદીના, અથવા તો હિંસા ઝૂઠ ચોરી વિષય ભોગાદિક ભાવ છે. એ ઉપર કે શુભ પરિણામ શુભ ભાવ, ઓર નીચે હિંસા આદિ જો હૈ વો અશુભ પરિણામ, પણ તે બંને પ્રકારના ભાવ આકુળતાને દુઃખરૂપ છે, તેથી તે દુઃખી છે. પરંતુ અરે તેને ખબર નથી દુઃખ ક્યાં છે, દુઃખ કેમ થાય છે, તેમજ દુઃખનો નાશ કેમ કરવો, તેનો પત્તો તેને નથી. એ તો બહારની પ્રવૃત્તિથી, કાંઈક દયાદાન વ્રત ભક્તિ પૂજા આદિ પ્રવૃત્તિથી દુઃખ મટે છે એમ માને છે, પણ ભાઈ તે પ્રવૃત્તિ જ દુઃખરૂપ છે. તેરે પરિણામ જો આયે વો પ્રવૃત્તિ જો ઉઠી તેરે મેં વહી દુઃખરૂપ હૈ, ફિર આગે જાકે તુને દાન દિયા કે નહીં દિયા વો જુદી બાત હૈ. ક્યા કહે રે, અરે દુનિયાનો માર્ગ બીજો છે ને સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ દેવે ગણધરો અને સૌ ઇન્દ્રોની સમક્ષ દિવ્યધ્વનિ દ્વારા જે તત્વ કહ્યું છે તે કાંઈ બીજી ચીજ છે. જાવાણી કે જ્ઞાન તે સુજે લોકાલો સોવાણી મસ્તકણમ સદા દેતો. बोलो जिनवाणी माता की है।